पिछले सबक में आपने गौर फिक्र किया, आपने देखा शुक्रगुजारी के बारे में सोचा, नेमतों को गिना अल्लाह ताला की, ये आयत जहन में रही आपके। क्योंकि हमारे पास जो भी हम सबक पढ़ते हैं जुमे के दिन, एक पूरा हफ्ता होता है हमारे लिए तदब्बर करने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए। तो उन्हीं आयतों को बार बार पढ़ा करें, इन्हें कि सिर्फ सबक सुनाने की हद तक ग्रुप होना है तो हम जल्दी जल्दी उसको याद करके और सुना दिया और बात खत्म हो गई। बहुत अच्छा आपके पास टाइम होता है, इतने दिन में आप उस सबक को एब्जॉर्ब करें, जज़्ब करें। इसमें टाइम लगता है इस चीज को जज़्ब होने में। जब आपने एक दफा जुमे को पढ़ा, अब आप हर दिन बार बार उसको पढ़ेंगे, बार बार वो तफसीर आपके जहन में आएगी और आपको तदब्बुर करने का मौका मिलेगा। वरना आपने क्लास के बाद बंद कर दी किताब और उसके बाद ग्रुप के दिन खोली तो बात नहीं बनेगी, जहन में बैठेगी नहीं चीज। तो यहाँ पे हमने शुक्र गुजारी का देखा था कि शुक्र गुजारी एक एटीट्यूड है, सिर्फ एक अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, एक एटीट्यूड है कि इंसान हर वक्त अल्लाह ताला की दी हुई नियमतों को देखे भी, उनको एहसास भी करे, उनको गिने। ये आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देगी, इसलिए कि जब इंसान हर वक्त नियमतों को गिनता ही रहेगा, दिन रात सुबह शाम उठते बैठते आप नियमतें गिन रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं इन ताउदू नियमत अल्लाह ही ला तुसूहा, तुम तो अगर नियमतों को गिनते रहो एक को भी। तो गिनते का मतलब यह है कि यानी उसका इदराक करना चाहो ना, उसकी डेप्थ में जाना चाहो, उसके अंदर एक एक चीज को देखना चाहो, तो तुम तो एक नियमत को भी अहाता नहीं कर सकते। किसी ने बहुत अच्छा आंख का बहुत खूबसूरत वीडियो भेजा था, किस तरह आंख के सिर्फ एक सेल के अंदर तक, अगर आप चले सिर्फ एक ब्लड सेल के अंदर तक चले जाए तो उसमें पूरी कायनात है छुपी हुई। एक एटम के अंदर चले जाए तो उसमें भी एक पूरी दुनिया है। तो एक एटम तक अभी तो इन्होंने चारों ने एटम ही डिस्कवर किया कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या क्या चीजें, उसके अंदर भी इतने डेप्थ में आप चले जाए तो आप कहाँ तक जाके बात बनती है। हर चीज के एटम देखे और उसके अंदर से ये चीजों को समझने की कोशिश करें और अहाता करें तो इंसान नहीं कर सकता। सारी जिंदगी भी गुजर जाएगी आप गिनते रहे, नहीं गिन सकते, नहीं शुमार कर सकते, नहीं अहाता कर सकते, तो शुक्र कैसे अदा करेंगे। जो इंसान सारी जिंदगी नियमतों को गिनता रहे, आप मुझे बताएं उसके पास कहाँ ये वक्त होगा कि वो उन चीजों के बारे में सोचे जो वो जिनपे वो गिले करता है, जिनपे वो शिकवे करता है, जिनके ऊपर वो ना शुक्रिया करता है, जिनके ऊपर वो शिकायतें करता है। शिकायतों का तो वक्त ही नहीं मिलेगा, इसलिए कि पहले तो वो उन चीजों का तो शुक्र अदा कर ले जो उसके पास हैं, जो नहीं है उनका गिला करना तो बात की बात है। सारी जिंदगी इंसान पे पॉजिटिव ही रहेगा, शुक्र है ये मिला, शुक्र है ये मिला, शुक्र है। आप तो सिर्फ एक होलसम चीज को देखते हैं ना, पूरी की पूरी चीज को एक ऑब्जेक्ट को, शुक्र है मेरे पास ये मेज है। अब मेज के अंदर जाकर देखो तो कितना कुछ है। तो आप तो एक चीज को देखिए, उसकी डेप्थ में अगर जाएं तो हमारे ये सारे रोने जो हम रोते हैं वो खत्म हो जाए। तो किसको फुर्सत होगी कि वो इन चीजों के गिले शिकवे और रोने रोए। और इंसान जलूम है और कफार है, ये नहीं हमने बनना, ठीक है। और जलूम के अंदर मैंने आपको शिर्क का बताया था, जलूम में ये भी है अल्लाह की नाफरमानी, ये भी जलूम है, ये भी जुल्म है। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किया। तो उन्होंने क्या किया था, कोई शर्क तो नहीं किया था, एक नाफरमानी हुई थी। तो जुल्म नाफरमानी भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया इतनी नेमतें तुम्हें दी है फिर भी तुम नाफरमान हो और नाशुक्र हो। जिन नेमतों को तुम गिन भी नहीं सकते, इतनी पाके भी तुम नाफरमानी करते। तुम्हें तो सर सज्जे से ही उठाना चाहिए था कभी, उसके बावजूद तुम नाशुक्र हो। और हर वक्त हम हमारी नजर में कौन सी चीजें ज्यादा होती है हाईलाइटेड ऑल द टाइम, जो हमारे पास नहीं है, या जो बुरा हमारे साथ हो गया, या जो तकलीफ हमें पहुंच गई, या जो कोई मसला हमारा है वो ऑल द टाइम हमारी नजरों में होता है, और जो चीजें हमें मिली ही है वो हमारी नजरों से ओझल रहती है। और यही शैतान कराना चाहता है कि इंसान नाशुक्रा हो जाए। उसने अल्लाह ताला से कहा था, अल्लाह तेरी बहुत कम लोग ये तेरा शुक्र अदा करेंगे, बड़े एहसान फरामोश हैं ये लोग। तूने आदम बनाया ना, इसने तेरा शुक्र नहीं अदा करना, और वो हमने करके दिखा दिया। क्या हमारे रोने ज्यादा और नेमतों की शुक्रगुजारी कम है? एक दुआ कबूल नहीं होती तो हम उसका इतना गिला करते हैं और इतना रोते हैं, मैंने तो इतनी दुआएं की थी वो नहीं कबूल हुई, और जो इतनी कबूल हुई और जो इससे ज्यादा है जो अल्लाह ताला ने बिन मांगे तुम्हें दिया हुआ, उनका कोई एहसास ही नहीं। उनकी भी तो खबर लो, कभी उनके भी तुम शुक्र अदा करो। अगर उनके शुक्र अदा करने तुम बैठ गए ना, तो ये याद भी नहीं रहेगा कि कौन सी एक चीज थी जो तुम्हें नहीं मिली। और फिर आप आयत नंबर 28 देखे जरा दोबारा इसको, यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलम तरा इल्लज़ीना बदलू निअमतल्लाहि कुफ्रन, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर के साथ बदल दिया? यानी नेमत मिलने के ऊपर एटीट्यूड क्या होना चाहिए था? शुक्रगुजारी का। लेकिन उन्होंने क्या किया नेमत मिलने पे? कुफर किया। कभी आपने सोचा कि आपको क्या नेमत एक बहुत बड़ी मिली थी? वो ये है जो हक का रास्ता, हिदायत का रास्ता, ये दीन अल्लाह ने आपको इसका रास्ता दिखा दिया, ये दीन आपको दिया, ये समझ आपको दी, ये कुरान का रास्ता आपको दिखाया। उनको वहाँ पे नेमत क्या थी? जाहिर है उनके लिए भी नेमत जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है कि रसूल तुम्हारे पास आए या ये दीन तुम्हारे पास आ गया, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नेमत अता फरमाई है, और तुम इसकी नाशुक्री कर रहे हो, उसको ना मान के आज हमारे पास ये दीन आया। क्या हम ये नाशुक्री नहीं कर रहे कि हम इसको अपनाना नहीं चाहते अपनी जिंदगियों में, इसकी तरफ दावत नहीं देना चाहते किसी को भी, इससे शर्माई शर्माए रहते? तो बजाय इसके कि हम इस नेमत का शुक्र अदा करें जो एक हक इस दुनिया में, जो सिर्फ एक दिन है इस वक्त इस दुनिया में जो हक का कलमा, बाकी सब में कोई ना कोई मिलावट, कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई शिर्क या आमेजिश ये आ चुके हैं। जो अल्लाह की तरफ से भी अधियान आए थे अब वो भी अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है मौजूद, सिर्फ एक ये हक वाला कलमा है जो बाकी रह गया। लेकिन हम इस नेमत की कोई कदर नहीं करते कि हमारे पास हक है और बाकियों के पास नहीं है। तो हमने भी क्या किया, नेमत का बदल क्या किया? कुफर करके, नाशुक्री करके। मुशरिकी ने मक्का ने जुबान से रिजेक्ट किया, हमने अमल से रिजेक्ट कर दिया कि हम इस नेमत को नेमत ही नहीं समझते। अभी ये समझा कि ये दीन हमारे पास नेमत है, कभी इसको नेमत समझा कि अल्लाह ने आपको कुरान की नेमत दे दी है कि जितना आज आपको 13 पारे समझ में आने शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आज 13वां पारा मुकम्मल हो गया, अभी इस नेमत को सोचा? तो ये नेमते हैं, नेमतों की शुक्र गुजारी नहीं करेंगे तो नेमते बाकी नहीं रहती फिर। हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, हमेशा आजी, हमेशा शुक्र गुजारी, एहसान मंदी, इस चीज का इतराफ दिल में रहना चाहिए कि अल्लाह तुमने ये नेमत दी है। अब एक ऐसे शख्स का जिक्र है आज कि जो अल्लाह ताला के बड़े शुक्र गुजार थे, बड़े शुक्र गुजार थे, हर इम्तिहान में से गुजरे मगर शुक्र गुजारी का रवैया रखा उन्होंने हमेशा, और वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, अल्लाह के प्यारे। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि जो इंसान है वो जलूम और कफार है, लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो इससे बिल्कुल उलट पर्सनैलिटी का मालिक है, और वो कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इज क़ाल इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बि जाल, ए मेरे रब बना दे, हादल बलदा, इस शहर को, आमीना, अमन वाला। किस शहर को अमन वाला बनाने की बात कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम? मक्का शहर को। मक्का शहर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा, और उस वक्त इस शहर में, ये शहर तो कहला ही नहीं सकता, वो तो मसलन समझने के एक वीराना था, इस वीराने के अंदर कुछ भी नहीं था। कहा जाता है कि पहली दुआ वो है जो सूरह बकरा में हमने पढ़ी थी, वहां पे आप पढ़ चुके हैं, जहाँ पे पहला पारा खत्म हो रहा है वहां पे आप देखिएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ इस शहर के लिए भी। और अब दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए हैं, शहर आबाद हो चुका है, अब आके क्या फरमा रहे हैं? शहर की आबाद होना एक काफी नहीं होता, असल चीज होती है वहां का अमनो आमान। ठीक है, जब मक्का शहर बन चुका है तो अब इनको फिक्र हो रही है कि अल्लाह यहाँ पे अमन अता फरमाना। वा इज़ क़ाला इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम ने, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे। क्यों सबसे पहले अमन की क्यों बात की उन्होंने? इसलिए कि अमन इंसानों की जरूरत है। किसी भी जगह रहने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होती है ना, वो होता है अमनो आमान। जिस जगह अमनो आमान नहीं है ना, वहां पे जिंदगी अजीरों हो जाती है, लोग वहां से माइग्रेट करने लगते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमारे मुल्क में आप देखते हैं ना कि जब अमनो आमान का मसला होने लगा, लोगों को अपने ये फिक्र है कि भाई जान माल इज्जत महफूज नहीं है, तो लोग वहां से छोड़ छोड़ के उन शहरों से दूसरी जगह जाने लगे। तो पीस सबसे पहली चीज है जो चाहिए, क्योंकि अमन होगा तो बाकी नियमतों से भी फायदा उठा सकते हैं। मसलन किसी का काम कारोबार है, कि खाना पीना है, रहना सहना, जब तक अमन ही नहीं है वो कैसे उनको चैन मिलेगा वहां से। तो अमन पहली चीज है जो जरूरत है। और आज देखिए हम लोग भी निकले अपने मुल्कों से या और लोग भी निकले, अक्सर लोगों को यही मसला है कि अमनो अमान नहीं है हमारे मुल्क में, वहां पे जान और माल इज्जत महफूज नहीं है हमारे, इसलिए हम निकले। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह ताला ने इस शहर को अमन अता फरमाया। बल्कि फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिस रोज जमीन आसमान को बनाया उसी रोज इस शहर को हुरमत वाला करार दे दिया। तो क्यामत तक अल्लाह ताला की अता की हुई हुरमत की वजह से ये शहर बाहुरमत रहेगा। यानी वहां पे कैसे हुरमत वाला है वो, कि वहां पे ना कोई लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ना कोई दरख्त वगैरह काट सकते हैं, ना वहां पे कोई शिकार कर सकते हैं, ना वहां पे कोई किसी की गिरी हुई पड़ी हुई चीज को उठा सकते हैं, ना वहां पे कोई कत्लो गारत हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। यानी जान भी इज्जत माल महफूज, हत्ता के जानवर तक महफूज है, हत्ता के पौधे महफूज है, इतनी हद तक है, इतनी अमन वाला है ये जगह। और ये है सिंबल इस बात का कि उम्मत मुस्लिमा अमन कायम करने वाली उम्मत है। देखो जो इनका मेन सेंटर है कैसे अमन वाला, लेकिन अफसोस है कि आज उम्मत मुस्लिमा के साथ क्या नाम लग गया, दहशत फैलाने वाले, अमन वाले नहीं। इनका नाम ही मोमिन है, मोमिन भी अमन से निकला। तो यानी अल्लाह ताला ने इसको अमन वाला करार दे दिया। बल्कि जिस लिबास में आप इस जगह पे एंटर होते हैं वो लिबास कितना अमन वाला, एहराम पहन के आप एहराम की हालत में तो एक चीज को भी नुकसान नहीं दे सकते, एक चीज को भी काट नहीं सकते, शिकार तक नहीं कर सकते। तो अमन अल्लाह ताला ने ऐसा दे दिया वहां पे कि जमाना जाहिलियत में भी काफिर लोग भी अपने किसी बाप के दुश्मन, बाप के कातिल को भी देखते थे इस जगह पे, तो उसको कुछ नहीं कहते थे कि नहीं ये अमन वाली जगह। तो ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। वह जिनो बनी और बचा ले मुझको, वह बनी या और मेरी औलाद को, अन्नाबुदल असनाम के हम भूतों की पूजा करें, हम उनकी इबादत करें। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतना इस बात की फिक्र और कितनी इस बात का डर था, कहीं अल्लाह मेरी औलाद इस चीज में ना पड़ जाए। क्यों इस तरह का क्यों उनको डर था? इसलिए कि उन्होंने देखा हुआ था अपना, देखिए एक चीज से कोई गुजरा होता ना तो उसको फिर उस चीज का खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस कौम में रहे थे तो इनके तो घर में बुत बनते थे और बेचे जाते थे, बाप बुतों का कारीगर था और बुत बनाने वाला और बेचने वाला था। तो आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर में यह माहौल देखा था, अपनी कौम में यह माहौल देखा था, तो अब उनको इतना वो चीज का है कि या अल्लाह बचा लेना हमें, मुझको भी और मेरी औलाद को भी बुतों की इबादत से, क्योंकि दुनिया में उस वक्त ना हर तरफ शिर्क ही शिर्क था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब यहाँ पे लाके बसा रहे हैं, अल्लाह मैंने ऐसी जगह पे अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा है, अल्लाह तू इनको बचा के रखना। तो हर इंसान को अल्लाह ताला से इस तरह से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरी औलाद को शिर्क से बचा के रखना, मुझे शिर्क से बचा के रखना। और ये हर माँ बाप की कोशिश होनी चाहिए कि अपनी औलाद को हर तरह से शिर्क की चीजों से, शिर्क की जगहों से, शिर्क जिस चीज के अंदर जहाँ पे थोड़ा शक भी हो कि यहाँ पे शिर्क में पड़ सकते हैं, उन चीजों से दूर रखे। तो ये दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फौरन अमन की बात करके उसके बाद फौरन ये दुआ की, रब्बी ऐ मेरे रब, इन्ना हुन्ना, इन इन्होंने, किन्होंने, इन बुतों ने, अदललना कसीरम मिनन नास, इन्होंने गुमराह कर दिया बहुत सारे लोगों को। अल्लाह बहुत सारे लोग यानी बुतपरस्ती में पड़ गए, बुतों में इतने खो गए हैं कि अल्लाह को ही भूल गए, उस खालिक की पहचान से रुक गए। तो उस जमाने में लोग इतने वो खूबसूरत खूबसूरत बुत बना के, जैसे मैंने आपको बताया सोने चांदी के बुत बना के उनको इतना फैंसी करके फिर बस उनके आगे बैठ जाते थे। तो उनको ये खूबसूरत लगते थे, एक तो सामने नजर आते थे, तो बस उन्हीं की सजावट उन्हीं को संवारना और उन्हीं के पीछे पड़ गए थे। अब उनको तो रब भूल ही गया था, इन्होंने लोगों को भुला दिया है रब की याद और उनको गुमराह कर दिया। असल में यहाँ पे वैसे बुत की बात है, आज के बुत जो है ना वो ठीक है कि पत्थर नहीं है, मगर आज का बुत है, बुत क्या चीज होती है? पहले तो बात यह है कि हम अगर बुत को सिर्फ इतना सा समझ लें कि वो पत्थर से तराश के रखा हुआ वो बुत है, असल में कोई भी चीज जो इंसान को अपने अंदर इतना इन्वॉल्व कर ले कि उसको खुदा भूल जाए वो ही उसका बुत है। चाहे वो उसकी औलाद है, चाहे उसका मालो दौलत है, चाहे उसका काम कारोबार है, जॉब है, चाहे कोई भी पैशन जिस जो बन चुका है उसका, कि उसको ना नमाज याद, ना रोजा याद, ना हज का फरीजा याद, ना अल्लाह के हुकूक याद, ना अल्लाह की इताअत याद, ना अल्लाह का जिक्र याद, बस दिन और रात उसका ओढ़ना बिछोना वही चीज है, वो उसका बुत ही तो है। मेरे रब, इन्होंने तो बहुत सारों को गुमराह कर दिया, बुतों इनके पीछे लग के लोग पागल हो गए, अल्लाह हमें इससे बचा लेना। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, तो जो कोई पैरवी करे मेरी, मेरी पैरवी का मतलब क्या, यानी जो मेरे तरीके पर चले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था, कि शिर्क से बरी उज़्ज़िमा थे, हनीफ मुस्लिम वमा काना मिनल मुशरिकीन, यही था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका। अल्लाह ताला ने उनकी गवाही दी है कि वो हनीफ थे, फरमाबरदार थे, अल्लाह के यकसू थे और शिर्क से कोसों दूर थे, शिर्क नहीं था उन्हें। तो जो शिर्क से दूर हो, जो मेरे तरीके पर चले, फइन्नहु मिन्नी, तो वो मुझसे, मुझसे है का मतलब क्या, अरे वो मेरे दीन पे है, वो मेरे तरीके पे है, वो मेरा है, वो मेरा पैरोकार है, वो मेरा फॉलोअर है। ये नहीं कहा कि जो मेरी औलाद है वो मेरी है, जो मेरे तरीके पर चले, चाहे वो मेरी औलाद हो या बाहर वाले। इसका मतलब है कि खून के रिश्ता भी बाद में है, खून के रिश्ते को कहना तो ये चाहिए था ना, मेरे जो बच्चे हैं बस वो मेरे हैं, बाकी मैं नहीं किसी बात करता। फरमाया जो कोई मेरे तरीके पे चलेगा वो ही बस मेरा है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया था ना, ए नूह ये तेरा नहीं है, ये बेटा तेरा नहीं है, क्यों, इसलिए कि तेरे दीन पे नहीं। तो जो मेरे तरीके पे होगा वो ही मुझसे है। वह मन आसवानी, और जो नाफरमानी करे मेरी, यानी जिसने शिर्क किया, जो मेरे से ऑपोजिट चला, फिर क्या आगे कहना चाहिए था, अल्लाह उसको तो खूब सजा देना, उसको तो जहन्नुम में डालना ऐसे मुशरिकों को। लेकिन पता चलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाकई जो अल्लाह ताला ने उनकी खसूसियात बयान की है कि वो नरम दिल, बहुत ज्यादा अल्लाह के आगे रोने वाले, आजी करने वाले थे, वाकई उनकी उनके हिल्म का पता चलता है और उनके नरम दिली का पता चलता है कि ये नहीं फरमाया कि जो मेरी नाफरमानी करे अल्लाह वो खूब उसको अजाब देना, खूब पूछना उसको, नहीं, अजाब की बात ही नहीं थी। गफूर रहीम, तो अल्लाह तू गफूर रहीम, तू चाहे तो माफ कर दे, यानी ये नहीं कहा अल्लाह तू उनको माफ कर देना, जो शिर्क करे उनको भी तू माफ कर देना, ये तो फिर गलत बात हो जानी थी। फरमाया तू गफूर रहीम है, यानी तू चाहे तो अल्लाह तू उनको भी हिदायत दे, उनको भी अपने रास्ते की तरफ ले आए, तू जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे सजा दे। तो इससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पता चलता है, अब हम अपने आप को भी देखें, फिर जब हम ऐसे किसी को देखते हैं तो हमारे मुंह से फौरन क्या निकलता है, अल्लाह बस इसको तो ऐसा कर देना, और इसको तो जब सजा मिले तभी पता चले, जहन्नुम में जले गए तो फिर इसको पता चले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अखलाक और किरदार देखे, वरना कोई बात ना माने तो इंसान 4-6 दफा के बाद कहता है बस इनाफ इज इनाफ और बद्दुआ देने लगता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ऐसे थे कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे भी अजाब का जब पता चला तो फरिश्तों से बहस करने लगे, हमने पढ़ा था ना ये, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम बस इस बात को छोड़ दो। हलीम थे, अवाह थे, दूसरों का दुख और तकलीफ उनसे नहीं बर्दाश्त होता था। और ये भी नहीं फरमाया अमन आसानी फलई समी, जो मेरी नाफरमानी करे तो वो मुझसे नहीं है। अल्लाह बस तू गफूर रहीम, बात यही तक करती। ये ऐसे ही है जैसे ईसा अलैहि सलाम ने भी फरमाया था इन तो अज़ब हम फइन्नहु इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह अगर तू अजाब दे तो तेरे बंदे अगर माफ कर दे तो तू गालिब और दाना, मैं क्या कर सकता हूँ, तो अजाब भी देगा तो तेरे बंदे हैं, तू जो मर्जी चाहे करे, मैं तो इसके अंदर कोई पावर नहीं रखता, ना तेरे बंदे हैं। जैसे कोई कहे भाई आपके बच्चे आप इनको मारे रखे हैं इनको, मैं क्या कह सकती हूँ, ऐसे भी तो नहीं है, आपके बच्चे हैं अब जैसे मर्जी चाहे। लेकिन अगर माफ कर देगा वालिद है, दाना है, और सही मुस्लिम में यह हदीस आती है इसी इसी आयत के उसके अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा रात को खड़े हुए तहज्जुद में खड़े हुए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी दुआ को बार बार मांग रहे हैं, बार बार रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरा मिन अन्नासि फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम, ये कह रहे हैं। फिर फरमा रहे हैं इसके बाद जो ईसा अलैहिस्सलाम की बात, इन तो अज़िबहु फइन्नहु मिबाद व इन तगफिर लहु फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। क्या ख्याल आया होगा ना कि अल्लाह तू अज़ाब दे दो तेरे बंदे हैं, हम दिल के अंदर देखें इतनी उम्मत से शफकत है, इतनी उम्मत से शफकत है कि अब ये कहा नहीं जा रहा कि अगर अल्लाह तू अजाब दे तो तेरे बंदे, हालांकि अल्लाह का हक है, चाहे तो अपने बंदों को अजाब दे, चाहे तो उनको हलाक करे, चाहे तो उनको जहन्नुम में फेंके, अल्लाह के बंदे जैसे मर्जी चाहे, अब ये बोलना नहीं जा रहा तो ये कह के फरमाते दोनों हाथ उठा के अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, रो रो के अपनी उम्मत को याद कर रहे, अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत के ये नहीं कहा जा रहा कि अल्लाह तू चाहे अजाब देना, अल्लाह मेरी उम्मत, यानी आगे बोल भी नहीं पा रहे, रो रही इतना ज्यादा, अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहि सलाम को हुक्म दिया जाओ जाके मेरे रसूल से पूछो क्यों रो रहे। मैं आके पूछा, हालांकि अल्लाह ताला तो जानता है हमें बताने के लिए कि हमें याद रहे कि हमारा नबी हमारे लिए कितना रोया। तो जब पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया अपनी उम्मत के लिए रोता हूँ। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया जाओ जाके खुशखबरी दे दो कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे। नहीं, एक एक उम्मती का इतना दर्द है कि मेरी उम्मती का क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या होगा उनका, मैं कैसे कहूँ अल्लाह जो जो तेरी नाफरमानी भी करे तो बस ठीक है, तू गफूर रहीम है, जो जो चाहे तू करे बस ठीक है। नहीं अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, जैसे इंसान कोई माँ तड़पती है ना, है मेरा बच्चा, है मेरा बच्चा, इन्हें कैसे दिखूंगी कि मेरा बच्चा आग में जा रहा है, मेरा बच्चा ऐसे तड़प रहे। इसी बात के ऊपर सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है कि जिस उम्मत के लिए मेरे नबी इतना तड़पे हैं, इतना रोए हैं और ऐसे दुआएं मांगी हैं, अगर कुछ मुंह से निकल नहीं रहा अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, आज वो उम्मत किधर गिरी पड़ी है, किस जवाल का शिकार है कि भूल ही गई है कि उठना कैसे, ऐसा से जया भी नहीं रहा, ये तक भूल गई है कि हम कौन है, क्या है और किधर हमें जाना, आज क्या हाल हो रहा है। 1:1 आसानी सा इन्नका गफूर रहीम, अल्लाह जो मेरी नाफरमानी करे तो मैं फिर क्या तू बस गफूर रहीम। इतनी जरूरत नहीं थी कहीं कि अल्लाह फिर तू उनको ये कर तो वो कर, नहीं तू गफूर रहीम। मैंने शिर्क वाले से तो ऐलान बरात कर दी कि मेरा नहीं उनसे कोई ताल्लुक अल्लाह। फिर जो तेरा फैसला होगा, जो तू चाहे, जो जिसके जिसका उनको मुस्तहिक पाए तो तू गफूर रहे। मैं तुझसे किसी ज्यादती का अंदेशा तो नहीं, ना तू कोई ना इंसाफी करेगा। रब्बना ए हमारे रब, इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, ए हमारे रब बेशक मैंने तो बसा दिया अपनी औलाद में से, यानी पूरी औलाद को नहीं, मिन ज़ुर्रियती औलाद में से, यानी औलाद में से कुछ को, बाज को, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया था ना, फी वादिन गैरी ज़ी ज़रअइन, एक ऐसी वादी में जिसमें कोई ज़रात नहीं, कोई खेती नहीं, ऐसी वादी में, इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे घर के पास, हुरमत वाले घर के पास। अब आप देखें क्या फरमा रहे हैं, ऐ मेरे रब मैंने तो अपनी एक बच्चा है जो बुढ़ापे में मिला हुआ दूध पीता है, इतना छोटा है, वैसे ही माँ बाप को बड़ा प्यारा होता है, अगर अल्लाह तेरे हुक्म पे मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया ऐसी जगह पे जहाँ ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना कोई चीज उगती है, ना कोई बंदा बशर दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं है, ऐसी जगह पे बसा दिया अल्लाह के। और कौन ऐसी जगह पे अपने खानदान को अकेला छोड़ के जा सकता है जो अल्लाह पर अंधा एतमाद करता हो, उसको ब्लाइंड ट्रस्ट हो, उसको इतना भरोसा हो कि वाकई जो रब है वो हिफाजत करने वाला, जो रब है वो रिज़्क देने वाला, जो रब है वो ही इनकी इनके सारे जरूरियात को पूरा करने वाला, जिसको पूरा मुकम्मल भरोसा हो अपने रब पे, वही ये काम कर सकता है। वरना इंसान को 1000 थॉट्स आएंगे जहन में, क्या ही खाएंगे, कहाँ से पियेंगे, कहाँ से एक थैला खजूर का और एक मशकीदा पानी का लेकर, और वो बीबी हाजरा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया है और खुद वहां से रवाना हो रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 99 इयर्स की एज में अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम दिए थे, और इतने से दूध पीते बेबी को, अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या होगी, चलो 99 साल हो गई होगी या 99 साल होगी, यानी इस दूध पीते बेबी को किस जगह लेकर आए हैं जहाँ अल्लाह तेरा घर है, जहाँ पे कोई चीज नहीं, और कितना को दे सकते हैं, खजूर का थैला दे दिया, पानी का मशकीदा दे दिया, उनके पास रखा और खुद चल पड़े। बीबी हाजरा पीछे दौड़ी है, या इब्राहिम आप हमें इस उजाड़ जगह पे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, ना यहाँ पे कोई हमसाया है, ना यहाँ पे कोई साथी है, ना यहाँ पे कोई जरूरत का इंतजाम है, आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जरा सोचे ना, जहाँ पे आज भी नहीं ना कोई चीज उगती है, आज वहां पे ना कोई फल ना कोई फ्रूट, वहां की अपनी तो कोई भी नहीं है प्रोड्यूस, वहां पे ऐसी दिया बांध जगह पे आप हमें किधर छोड़ के जा रहे। आज इंसान अपनी औलाद के लिए कौन सी जगह को पसंद करता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा उनके लिए आसाइशिंग हो, जहाँ पे उनकी जरूरियात का इंतजाम हो, कौन दिया बांध जगह पे छोड़ के जाता है। अब वो कह रही है कि आप किधर हमें छोड़ के जा रहे हैं, और 2-3 दफा कहती हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तब कहती हैं कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सर हिला देते हैं कि हाँ, फरमाती हैं अच्छा फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। अब माँ का, उस औरत का भी अल्लाह के ऊपर जो भरोसा है, उसको इमेजिन कर सकते हैं कितना भरोसा होगा कि अल्लाह फिर हमें जाया नहीं करेगा, इतना यकीन है। आज कहते ना हम के देखो इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे थे, कितने फरमाबरदार थे, कितने अच्छे बच्चे थे, तो जाहिर है जिसकी माँ हाजरा होगी और बाप इब्राहिम होगा वो बच्चा फिर कैसा होगा। आज हम कहते हैं हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं, तो हम कौन से बीबी हाजरा की तरह की माए है जो हम कहेंगे हमारे बच्चे ऐसे नहीं, बच्चों से शिकायत है, हम खुद कहाँ ऐसे। तो जाहिर है जब माँ ऐसी होगी तो फिर आगे औलाद भी वैसी ही तरबियत पाएगी। तो अब वहां पे फिर अल्लाह ताला ने इनको किस तरह से आबाद फरमाया कि आज ये शहर जो है, आप मक्का जब जाते हैं तो आप ये सोच लिया करें कि इस शहर की बुनियाद एक औरत ने रखी थी, औरत ने बसाया इस शहर को, इससे इसकी उसने बुनियाद रखी थी। तो अल्लाह मैंने ऐसी जगह पे लाके अपनी औलाद को बसा दिया है, तो तेरी हुरमत वाले घर के पास, यानी इस जगह पे। अब वहां पे उस वक्त तो ना भी था अल्लाह का घर, मगर उसकी बुनियादें तो मौजूद थी ना, जो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से एक बुनियादें थी। इसलिए बसाया रब्बाना हमारे रब, इसलिए बसाया लियुकीम अस्सलात, ताकि वो कायम करे नमाज, तेरे घर के पास लाके बसा दिया ताकि यहाँ पे वो नमाज, जैसे हम मतलब कोई कहे कि हमने घर ना मस्जिद के पास लिया ताकि मेरे बच्चे नमाजी बन जाए, और वाकई बच्चों को नमाजी बनाने के लिए ऐसा जरूरी है, घर भी इंसान वो देख के ले जो मस्जिद के करीब हो, मस्जिद को प्रायोरिटी बनाए, यानी मस्जिद की परवाह नहीं, कहीं से भी कहीं भी घर ले लिया, हमने कौन सा मस्जिद जाना, चलो 15 मिनट की भी ड्राइव पे है तो कौन सा हम रोज मस्जिद जाते हैं, अरे आप ये सोच के लेंगे ना घर की अल्लाह ताकि मेरी औलाद नमाजी बने, मस्जिद में जाया करे, तो उसका भी अजर है। और हरम में तो नमाज पढ़ने का अजर ही कितना ज्यादा है, 1 लाख नमाजों के बराबर। तो देखिए उनके शौक कैसे था, हम जैसे कहीं जाते हैं मूव होते हैं तो हमारा क्या होता है, अल्लाह हम यहाँ पे आए हैं ताकि यहाँ पे हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हम ये डिग्री ले लें, हम ये। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शौक क्या था कि अल्लाह मैंने यहाँ पे तेरे घर के पास, चाहे वीराना चाहे यहाँ पे कुछ भी नहीं उगता, इसलिए पता है राज़िक अल्लाह है, जिसकी खातिर सब छोड़ के यहाँ पे लेकर आया हूँ अपनी औलाद को, वो खुद ही इसका इंतजाम करेगा रिस्क का। तो अल्लाह लेकिन मेन पर्पस क्या है, मेरी औलाद नमाज को कायम करने वाली बन जाए। हालांकि औलाद अभी क्या है, इतनी छोटी सी बेबी है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सोच देखे कहाँ पे, औलाद की नमाज की फिक्र है। हम कितनी दफा ये सोच के घर बदलते हैं कि हमें औलाद की नमाज की फिक्र हो, कि भाई वो नमाजी बन जाए। अल्लाहु अकबर, ताकि वो नमाज कायम करे। फजअल अफ़ईदतन मिनन्नास तहवी इलैहि, और पस तू अल्लाह कर दे लोगों के दिलों को मायल इनकी तरफ, किनकी तरफ, बैतुल्लाह की तरफ और अल्लाह इस मेरे घर वालों की तरफ, दोनों ही मुराद है, मेरे अहले बैत की तरफ और मेरे और बैतुल्लाह की तरफ, इस जगह की तरफ भी, मेरे खानदान की तरफ भी मायल कर ले। और अल्लाह ताला ने वाकई फिर जुर्हम कबीले को इस तरफ भेज दिया था, जुर्हम कबीला आया और उन्होंने आके देखा कि एक औरत है, मतलब उन्होंने देखा ना एक परिंदा उड़ रहा है, और यहाँ पे सोचा कि कोई पानी है, लगता है कि परिंदा यहाँ पे उड़ रहा है। वाकई वहाँ पे गए तो बीबी हाजरा वहाँ पे थी, और वो उन्होंने इस शर्त के ऊपर इनको यहाँ पे रहने की इजाजत दे दी कि पानी के ऊपर बीबी हाजरा का ही कब्जा रहेगा। कभी मैं सोचती हूँ तो देखें वो एक कबीला आया था, बीबी हाजरा अकेली औरत थी एक बेबी के साथ, लेकिन उन लोगों में फिर भी कोई एथिक्स थे कि उन्होंने ये नहीं किया कि इसको मार के खत्म करके फेंको यहाँ पे और पानी पे हम कब्जा करके बैठ जाते हैं। आज की तो जाहिलियत पुरानी जाहिलियत से भी ज्यादा बदतर है, तो किसी अकेली औरत को देख लेंगे कोई समझेगा इस काबिल के, ये इसको इसकी पहले इससे इजाजत लें और फिर उसके बाद हम रहे, कहेंगे इसका ही काम तमाम करके खत्म कर। तो वो जाहिल लोग भी बेहतर थे आज के बहुत पढ़े लिखों और सिविलाइज्ड वर्ल्ड से, तो उन्होंने इजाजत लेकर और वो वहां पे बस गए। तो अल्लाह ने उनको वहां पे देखे एक मायल कर दिया ना लोगों का दिल उस तरफ, और फिर उसके बाद लोगों के दिल ऐसे मायल हुए, लेकिन उनकी दुआ सुभान अल्लाह, देखिए एक एक वर्ड में ना हिकमत है। ये नहीं फरमाया अब इधर तन नासी तहवील है, अल्लाह लोगों के सारों के दिलों को इधर मारते, अन्नास अगर कह देते तो रोम पारे सारी दुनिया यहाँ पे कब्जा करने के लिए खड़ी हो जाती, मीनन्नास लोगों में से लोगों को, यानी बाज लोगों को, यानी ईमान वालों के दिल इस तरफ मायल कर दे, पूरी दुनिया के लोगों के दिल नहीं मायल करते, सारे यहाँ पे जंगे होती रहती है और सब कब्जा करने की कोशिश करते फिर तो इस जगह को, अगर सबके ही दिल मायल हो जाते। लेकिन मीनन नाज कहा तो अब मुसलमानों के दिल इस तरह मायल होते हैं, और देखो आज कैसे मायल है कि लोग तहवी आया ना सुभान अल्लाह, लफ्जों की भी इतनी खूबसूरती है, यानी चाहत मोहब्बत और हवा, मैंने आपको बताया ना कि ऐसी जैसे ख्वाहिश नफ्स के लिए भी आता है, जिसमें ऐसी ख्वाहिश ऐसा इंसान किसी चीज के लिए शौक रखे कि जिसमें अपने इंसान सब चीज भूल जाए, अपना घर बार अपना अपने आप को, इंसान इतनी किसी चीज की मोहब्बत में इतना पैशन हो ना अपना आप ही भूल जाए कि मैं कौन, इसको कहते हैं हवा, इतनी यानी मोहब्बत, इतना पैशन। अब आप देखें वाकई आज अल्लाह ने ऐसी ही मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी कि अपने घरों को छोड़ के उस जगह जाते हैं हज और उम्रे के लिए, अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, अपना स्टेटस अपना ये सब मकाम भूल जाता है कि हम क्या हैं और दो कपड़े पहने हुए और उस लिबास में वहां पे पहुंचे हैं, और फिर देखें अपनी हैसियत या अपनी जो पोजीशन है उसका भी कोई ख्याल नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, गरीब अमीर सब घुले मिले, ना कोई पता है कि कोई फकीर है, ना कोई पता है कि कोई बादशाह है, सब लिबास एक, तराना एक, हाल हुलिया एक, सब चूंकि इतने ज्यादा पैशन है तो ऐसा करते हैं। ऐसा अल्लाह ने दिलों में उस जगह की मोहब्बत को डाल दिया, और अगर मैंने जैसा आपको बताया अहले बैत की मोहब्बत उनकी ली जाए ना, कि दोनों की मोहब्बत हो गई है, इस घर की भी मोहब्बत और अल्लाह ये जो मैंने अपने बीवी बच्चे यहाँ पे छोड़े हैं इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे, तो वाकई उनकी मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाल दी, उन्हीं की औलाद में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत कैसे दिल में डाल दी अल्लाह ताला ने, और मोहब्बत मांगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के लिए मोहब्बत मांगी अल्लाह से, और मोहब्बत इंसान की जरूरत है, और मोहब्बत वही पाता है जो मोहब्बत देना जानता है, जो लिया दिया रहता है लोगों से बस एक डिस्टेंस पे रहता है कि मैं लोगों से एलर्जिक हूँ बस इनसे दूर दूर ही रहूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसमें कोई खैर नहीं, जो ना मोहब्बत करता है और ना उसको मोहब्बत मिलती है कहीं, उसमें कोई खैर नहीं। तो उन्होंने मोहब्बत की भी दुआ की है, वर्जुक हूँ मीना समरात, और अल्लाह इनको रिस्क देना फलों में से। आज देखिए वहां पे कितने 20 लाख 30 लाख कभी हुज्जाज जमा हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने कोई कमी देखी खाने पीने की, ये खाने पीने की चीजें ना मिले, फलों का मतलब क्या है खाने पीने की चीजें, मैंने आपको पहले भी बताया ना प्रोड्यूस, तो उस आज तो चलो ठीक है जहाजों में चीजें आती हैं, वो है उस जमाने में भी एक तजारती मरकज बन गया था, एक सेंटर बन गया था ट्रेडिंग का, ये जगह लोग यहाँ पे लाते थे चीजें बेचते थे, जिस जगह पे खुद कुछ भी नहीं उगता वहां पे भी हर चीज पहुंची होती। हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि पहले उन्होंने दुआ मांगी थी समरात की, और उस वक्त कहा था कि अल्लाह जिस बस जो तेरे पर ईमान लाए बस उनको देना, अल्लाह जो दूसरे हैं यानी उनको नहीं, लेकिन यहाँ पे कहा कि रिस्क दे इनको मेरा समर आती फलों में से, यानी खाने पीने की चीजें अल्लाह इनको मुहैया फरमा, क्यों लअल्लहुम यशकुरून, अल्लाह इसलिए ताकि ये तेरे शुक्र गुजार बने, तेरी शुक्र गुजारी करें, शुक्र अदा करें, यानी ये भी क्यों दे नेमते इसलिए देना ताकि इनमें शुक्र गुजारी पैदा हो। देखिये हर चीज का मकसद उनके नसीब कितना प्यारा था कि अल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये तेरी शुक्र गुजारी करे। अब शुक्र की बात पहले आई थी ना, हमने पढ़ी है पहले 34 आयत के अंदर शुक्र की बात पढ़ी, अब बताया जा रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को भी चाहते थे कि उनमें शुक्र गुजारी हो, और शुक्र से मुराद सिर्फ जुबानी अल्हम्दुलिल्लाह कह देना नहीं है, बल्कि शुक्र जैसे मैंने आपको बताया कि रवैया है, एक एटीट्यूड है, एक एहसास है, नेमत देने वाले की वफादारी, उसकी इताअत गुजारी, ये शुक्र है, हमेशा उसका बन के रहना जिसने आपको नेमत दी है, ये शुक्र है उसका। और देखिए यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स में देखें, नमाज मांगी, मोहब्बत मांगी दिलों में लोगों की, कि वो मोहब्बत डाल दे, इनकी तरफ लोग खींचे चले आए, और समरात्मा। अब अगर आप कहें कि ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के लिए दुनिया मांग ली है, क्या ये दीनदारी है कि वो दुनिया मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए? तो दीनदारी के खिलाफ नहीं है ये? नहीं, ये दीनदारी के खिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया की नेमतों को इंसान पे हराम नहीं किया, दुनिया की नेमतें भी मांगे और आखिरत भी मांगे। बात यह है कि दुनिया चूंकि नाकिस है ना, नाकिस है, यहाँ पे हर चीज ही मांगनी पड़ती है। यहाँ पे सेहत भी मांगनी पड़ती है, अल्लाह रिस्क भी दे दे, अल्लाह अमनो अमान भी दे दे, अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे। आखिरत, सुभान अल्लाह, क्योंकि आखिरत की जो जन्नत है वो मुकम्मल है, तो वहां पे आप सिर्फ अगर ये कह देते हैं ना, बाग लोग कहते हैं ना, अगर हम दुनिया ही मांगते रहते हैं, आखिरत कम मांगते हैं, आखिरत की दुआएं हमारी कम होती हैं और दुनिया की ज्यादा होती हैं। इसका जवाब पता है क्या है? इसका जवाब यह है कि हाँ ऐसा होता है, इसलिए कि दुनिया नाकिस है और आखिरत मुकम्मल है। दुनिया में ये सब चीजें मांगनी हमारी जरूरत है, आखिरत के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये कहते हो अल्लाह जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल कर देना, या अल्लाह अपने तमाम अजाबों से बचा के जन्नत में दाखिल कर देना, तो कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं। सुभान अल्लाह, कुछ भी नहीं मांगने की जरूरत, इसलिए कि ना अमन मांगने की जरूरत है, ना सेहत मांगने की जरूरत है, ना हिदायत मांगने की जरूरत है, ना नमाज मांगने की जरूरत है, ना फरमा बरदारी अल्लाह की उस पे चलने की मांगने की जरूरत है, ना अपनी औलाद के लिए कुछ मांगने की जरूरत है। वो तो है ही, चीज जो उसमें दाखिल हो गया फिर तो सलामती सलामती, अब क्या मांगना, बस एंट्री चाहिए उसके अंदर, तो उसके बाद सब कुछ मिल गया। लेकिन क्योंकि ये दुनिया नाकिस है, ये वो इसमें एक चीज मिलती है तो दूसरी की कमी है, दूसरी मिलती है तो तीसरी की कमी है, तो इसमें तो हर चीज ही मांगनी पड़ेगी। हिदायत भी इसमें मांगो, अमन भी इसमें मांगो, जो खाने पीने की फरामानी भी इसमें मांगो, रिस्क भी मांगो, शुक्र गुजारी भी मांगो। उस जन्नत में तो कलमा ही सलाम होगा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होगा और ये तस्बीहात तो सांस के साथ चल रही होंगी। वहां पे क्या मांगना, ना सेहत मांगने की जरूरत है, बीमारी नहीं, ना बुढ़ापे से बचने बच के जवान रहने की दुआ मांगने की जरूरत है कि वहां पे बुढ़ापा ही नहीं, तो वहां पे तो सब कुछ ही है। तो ये सारी दुआएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं, ये दुनिया की हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो दुआ सिखाई, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, पहले दुनिया मांगी, ये कुरान हमें दुआ सिखाता है, दुनिया पहले मांगोगे, यहाँ पे हसना मिलेगी तो आखिरत की हसना मिलेगी ना, यहाँ पे अच्छाई मिलेगी और अच्छाई के अंदर फिर क्या, नेकी की तौफीक, यहाँ पे नेकी की तौफीक मिलेगी तो आखिरत अच्छी होगी ना। तो ये ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखो सलाह मांगी ताकि कायम रहे नमाज के ऊपर, अल्लाह मैंने इसलिए लाके यहाँ पे बसाया, इनकी तरफ दिल मायल कर दे लोगों के, इसमें कोई बुराई नहीं है मांगने में, और रिस्क मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ शुक्र गुजारी मांगो। और ये ना कहो कि पता नहीं हमसे तो शुक्र होगा अदा के नहीं होगा, तो अच्छा ये हमें कुछ ना मिले, हम फिर क्यों मांगे, पता नहीं हमसे शुक्र भी हो सकेगा कि नहीं, नहीं मांगो और शुक्र भी मांगो, अल्लाह शुक्र भी तेरी तौफीक से ही हो सकता है, तो अल्लाह तू शुक्र की नेमत भी अता फरमाना कि मुझे शुक्र गुजारी वाली जुबान अता फरमाना, शुक्र गुजार दिल अता फरमाना। रब्बना ए हमारे रब, इन्नका तालमु, बेशक तू जानता है, मा नुखफी, जो हम छुपाते हैं, वा मा नुअलिम, और जो हम जाहिर करते हैं। ए हमारे रब, तू सब कुछ जानता है, यानी अब ये किस वक्त वो फरमा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब वो जा रहे हैं बीबी हाजरा को और अपने बच्चे को छोड़ के और चले जाते हैं, और जब ये लोग नजरों से ओझल हो जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पे खड़े होके इनकी तरफ अब मुंह करके अब ये दुआ कर रहे हैं, और दुआ करके अब दिल का आलम सोचे क्या होगा। जरा आप सोचे, जब हम पहली दफा इस मुल्क में आए और हमने अपने प्यारों को छोड़ा, तो हालांकि किसी ने छोटे बच्चे को नहीं छोड़ा किसी ने, लेकिन चलो माँ बाप को छोड़ा, किसी को छोड़ा, तो दिल का हाल क्या होगा।
हालांकि फोन कर करके टेक्स्ट करके हर एक बात का पता दे रहे हैं, वो तो ना कोई फोन है ना कोई टेक्स्ट है ना कोई अता पता, फिर आप पता नहीं कब मिले, और बस इनको अल्लाह के हवाले करके और अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं। और बच्चा भी वो है जो इतनी प्यारी एज का है कि इस वक्त तो माँ बाप उससे खेल के दिल बहलाते, और वो है जो सारी जिंदगी की दुआओं के बाद अब मिला बुढ़ापे में जाके, और ये भी नहीं पता कि दोबारा कब मिलेंगे, उसमें दिल की कैफियत क्या होगी। अब लेकिन उस वक्त अपने दिल का हाल अल्लाह के आगे ही रखते हैं, अल्लाह तू तो जानता है जो दिल में छुपा हुआ है वो भी तू जानता है, जो जाहिर कर रही जो भी वो भी तू जानता है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी जानता है। अल्लाह ये भी एक कठिन मरहला और एक कितना बड़ा इम्तिहान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। वमा यख्फा अल्लाह और नहीं छुपी भी अल्लाह पर मिन शैइन कोई चीज भी फिल अर्दी वला फिस समा, ना जमीन की और ना आसमान, आलिमुल गैबी व शहादा है। तो कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे दिल का हाल तेरे सामने है, जो मैं जाहिर कर रहा हूँ वो भी तेरे सामने, तुझे पता है कि क्या जाहिर हो रहा है और क्या दिल में, ये यानी हमारी कमजोरियां भी पता है, जमीन आसमान का हाल तू जानता है, तो हमारी कमजोरियां हमारी जरूरतें हमारी हाजतें सब तुझे पता है। तो बाद लोग फिर कहते हैं हम मांगने की क्या जरूरत है, जब सारी जरूरियात ही अल्लाह को पता है तो फिर हमने क्यों मांगना। ऐसी बात नहीं है, दुआ तो आपका और अल्लाह के दरमियान एक ताल्लुक है, एक वास्ता है, एक इबादत है, दुआ फिर भी मांगनी है। हालांकि कई चीजें ही है जो आपकी दुआओं के बगैर ही अल्लाह ताला अता फरमा देता है, अल्लाह को पसंद है कि तुम उससे दुआ करो मांगो उससे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक। अब इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको हो सकता है कि ये बात उस वक्त की जा रही हो जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा वापस आए, क्योंकि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए थे पहली दफा उस वक्त तो इसहाक अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, तो हो सकता है ये वाली बात अब उस वक्त की जा रही हो जबकि दोबारा आए। तो ये दुआ सेकंड टाइम की हो। अब क्या कह रहे हैं सेकंड टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह किस बात पे शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र है इस बात पे, अल्लाह का शुक्र है उस रब का शुक्र है जिसने मुझे अता किया इस्माइल और इसहाक बुढ़ापे की उम्र में आके। यानी जब सोचें इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन 100 साल के हो गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तब पैदा हुए, तो इसहाक अलैहिस्सलाम तो बाद जगह पे आता है 112 ईयर के थे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उस वक्त पैदा हुए थे, बाद में आता है 117 ईयर के थे जिस वक्त इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, यानी इतना ज्यादा बुढ़ापा था। आज तो हमने कोई 100 ईयर का भी नहीं बंदा देखा, अबव 100 ईयर। उस वक्त अल्लाह ने औलाद की नेमत दी, नहीं इस बुढ़ापे में आके जब कभी कुछ सोच तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ये इतना यानी इसमें तो इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है कि अब क्या बच्चे होने, कभी कोई भी मायूस ना हो, कुछ देर भी हो जाए तो भी इंसान अल्लाह की रहमत से ना मायूस, तब शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह तूने मुझे ये नेमते दिए इस्माइल और इसहाक, औलाद की नेमत पे शुक्र अदा कर रहे हैं उसके अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। हम औलाद की नेमत पे शुक्र गुजारी करते बहुत दफा तो हम ना शुक्री करते, हाय मुसीबत हाय इनको संभालना पड़ गया, एक मसला आए ऐसे और वैसे जरा सताए तो क्या क्या कहते हैं, उनके वजूद से ही तंग रहते हैं कि बस कहीं चले जाएं, इस वक्त इनको यहाँ तो कोई ले जाए या तो कुछ है हमारी जान छोड़े, किसी ना किसी का घर भेज दो, ऐसा एटीट्यूड रखना ये तो नाशुक्री की बात है कि मेरे सर से उतरे। सोचें अगर ये औलाद ना होती तो आपकी जिंदगी कैसी होती, औलाद तो एक नेमत है। बाज लोग तो इस कदर नाशुक्री करते हैं कि कोई प्रेग्नेंट हो जाता है ना, तो मैंने खुद अपने कानों से बातें सुनी, कोई प्रेग्नेंट हो जाता है उसको बाकायदा कहने लगती है बस अब तो तुम्हारी जिंदगी बस सारा फन तुम्हारा खत्म। अब ना तुम्हें रात की नींद, बस सो जाओ अभी जितना अच्छी तरह सोना, जैसे कि हाय उसके बाद पता नहीं तुम कितनी मुसीबत में पड़ गए। बस गरम खाना खा लो जितना आप खाना है, फिर तो ठंडे ही खाने पड़ेंगे। ये अल्लाह नेमत दे रहा है तो तुम इस तरह के रवैये करते हो, ये नेमत है, जितना एंजॉय करना है फिर कर लो, फिर उसके बाद क्या, ना तुम कहीं जा सकोगी ना कुछ है, बस यही फीडर बनाने, उसका करना, उसका बैग तैयार करो। नहीं बाकायदा लोग बिठा के, इसीलिए लोगों को अब पसंद ही नहीं कि औलाद हो, या औलाद भी हो तो ज्यादा ना हो, बस एक आध हो तो बस इतना ही काफी है। वो इस नेमत के ऊपर शुक्रगुजारी कर रहे और हम दिन और रात ना शुक्रिया करते। हाँ बच्चे सताएंगे भी, बच्चे हैं तो सताएंगे भी, लेकिन सोचे अगर ना होते तो क्या होता, सताना तो नहीं होना था, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में कोई फन होता सब? ऐसा नहीं, हम भी असल में इस तरफ को निकल गए हैं, हम भी गैर मुस्लिमों को देख के बस जिंदगी को फन ही बना लिए। अब बच्चों में हमारे फन के अंदर क्यों मुदाखलत हो जाए, हम सैरें कैसे करेंगे, हम कहीं मजे कैसे करेंगे, हमारा इनको अब ले लेके जाना पड़ेगा तो अब आए ये मुसीबत आए ये तो वही कहीं ये ना हो कि अल्लाह ताला को कोई बात ना पसंद आ जाए। अब छुट्टियां होने लगेंगी तो उसके ऊपर मसले के, हाय ये आप घर पे रहेंगे तो हाय हमारा क्या होगा। इन्ना रब्बी लसमिया दुआ, तो वो कह रहे हैं कि बेशक मेरा रब तो अलबत्ता सुनने वाला है दुआ का, कि उसने मुझे इतने इस बुढ़ापे में आके मुझे ये औलाद दे दी है, वाकई अल्लाह दुआ का सुनने वाला है। तो उस टाइम पे जिस वक्त इंसान कोई कहे के अब क्या मेरी दुआ सुनी जाएगी, सारी जिंदगी तो दुआ मेरी कबूल नहीं हुई तो अब क्या होगी कबूल, नहीं इंसान सोचता है ना, एक चीज मैंने मांगी 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 नहीं पूरी हुई अभी तक तो अब क्या पूरी होगी। हालांकि अल्लाह समीय और दुआ है, जब चाहे कई चीजें बड़े इंतजार के बाद मिलती हैं। और फिर आगे वो दुआ है जो अक्सर हम रटी रटाई अपनी नमाजों में पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी दुआ, ये कितनी प्यारी दुआ, और यही वो दुआ है कि लोग मुझे कहते हैं हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, अब उनको ये दुआ बता दे। जब मैं उनको ये दुआ बताती हूँ तो वो शायद उनको ऐसे लगता है ये कौन सी इन्होंने दुआ बताती, ये तो हम हर वक्त नमाज में पढ़ते ही है, कौन सी ऐसी बड़ी दुआ बताती है। हालांकि इसका तर्जुमा आप देखें, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाह, और इसे आप इसकी सही तश्कील भी देख सकते हैं, यानी जेर जबर को भी अपनी चेक कर सकते हैं, जो आप को बचपन से याद हुई भी है ये दुआ, वाकई उसकी जेर जबर सेम है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये कुरानी दुआ है ना, एक एक जेर जबर सही होनी चाहिए। तो ए मेरे रब मुझको बना दे कैसा नमाज कायम करने वाला। अल्लाहु अकबर। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में भी इसका मतलब नमाज थी, इसलिए वो बच्चों की भी नमाज की फिक्र थी, अब फिर अपने लिए भी कह रहे हैं, क्या उन्होंने क्या खुद नहीं नमाज पढ़नी थी, वो तो पैगंबर थे, कभी ऐसा हो सकता है वो नमाज छोड़ते हैं, फिर क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना। इसलिए कि एक तो नंबर वन, इंसान का कुछ पता नहीं होता दिल कहाँ का कहाँ कभी चला जाए, हमारे जैसे तो बहुत ही मांगनी चाहिए थे, ये ना सोचे बचपन से पढ़ रही हूँ तो बस मैंने कायम ही रहना नमाज पे, अब थोड़ी मैंने कभी छोड़नी है, तो आदत ही पड़ गई, नहीं अल्लाह तुम मुझे कायम रखना, क्योंकि दिल के ऊपर इंसान का जोर नहीं है, इंसान की हालात के ऊपर, क्या हालत आज है ईमान की और कल क्या हो। नंबर टू क्या बात है, ये नंबर टू बात ये, अल्लाह अगर मैं नमाज आज पढ़ भी रही हूँ, अल्लाह तेरी दीवी तौफीक से पढ़ रही हूँ, कल तूने मुझे तौफीक ना दी तो मैं तो नहीं किसी काबिल, कहना मेरा दिल कायम रखना, मुझसे करवा लेना। और देखिए पैगंबर हो के भी नेकी के काम में खुद पे भरोसा नहीं है, अल्लाह हर नेक काम भी तेरी तौफीक से सर अंजाम हो जाए तो हो जाए, तुझका ना तौफीक दे तो नहीं कर सकते हम, इसलिए मांग रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे कायम रखना नमाज के ऊपर, मैं नमाज कायम करने वाला रहूं, हमेशा मुझे नमाज यानी मैं नमाज खुशू के साथ पूरे उसके शराइत के साथ अदा करने वाला रहूं। मैं उनकी फिक्रें कैसी, कितनी उनको नमाज की फिक्र थी, तो उनको ये नहीं पता कि मेरे बच्चों का बड़ा घर तो बना नहीं, अब इनका यहाँ पे क्या बनेगा, किधर से खाएंगे, किधर से पिएंगे, क्या होगा इनका स्टेटस, क्या होगा। वो उनको नमाज की फिक्र है, वो मेन जरूरियत ही अपनी नमाज, बच्चों की नमाज की, मेरी मेरी जरूरियत को भी कायम रखना नमाज से। और हम मांगते हैं अपने बच्चों के लिए इसी तरह नमाज की दुआ तड़प के, अल्लाह मेरे बच्चों को नमाज के लिए कायम रखना। या ये होता है कि सुबह को उठाने जाए तो हाँ ये बेचारे थक के सोए हैं, अभी क्या उठाऊं, चलो कोई बात नहीं सोने दो, बाद में कज़ा पढ़ने में, ऐसा तो नहीं होता। या बार बार उनको कहते हैं, उनकी नमाज की फिक्र करते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह नमाजी इनको बना, इनको नमाज पे कायम रख। और ये नहीं कि वो नहीं है कायम इस वजह से मांग रहे, चाहे कायम हो भी तब भी अल्लाह हमेशा कायम रहना। देखिए ये नेमतें, ऐसा नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास नहीं है, हैं भी तो उनकी बरकरारी के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह बरकरार रहे, कायम रहे, हमेशा ऐसा ही रहे। क्योंकि कई नेमतें इंसान के पास होती है लेकिन छीन भी जाती है, आपको नहीं पता होता। जो अपने लिए मांग रहे हैं अपनी औलाद के लिए भी मांग रहे हैं, औलाद इंसान की कमाई है ना। रब्बाना वतकब्बल दुआ, ए हमारे रब तू कबूल कर ले मेरी दुआ। अब ये कहने की क्या जरूरत है, मेरे इंसान दुआ मांगता है तो मतलब यही है ना कि अल्लाह तू कबूल कर लेना, क्यों कह रहे हैं फिर। इससे पता चलता है कितने डेस्परेट है, जैसे इंसान कहता ना अल्लाह कबूल कर लेना ना, बस मेरी दुआ कबूल कर ले बस, ऐसे हम बोलते ना, वो तकब्बल दुआ है हमारे रब तू कबूल कर ले मेरी दुआ। हम ये तो इतनी रटी हुई है कि शायद पता भी नहीं चलता कि हम कह क्या रहे हैं नमाज में, तो हम ये दुआ करते हैं रब्बी जमीन को चलाती होगी, जल्दी जल्दी बस पढ़ के खत्म। रब्बाना गफिर ली, है हमारे रब बख्श दे मुझको, बख्शे सबसे पहले अपनी। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि जब आप दुआ करते हैं ना तो उसमें तरतीब क्या होनी चाहिए। सर हमें तरतीब नहीं पता थी, तरतीब उलट कर देते हैं, अरे जहाँ पे ये दुआ करनी है कि सबसे पहले अपने लिए दुआ करो, याद रखें सबसे पहले अपने लिए, फिर उसके बाद अपना इनर सर्कल यानी अपनी औलाद है, वालदैन है, ये है, उसके बाद आउटर सर्कल जैसे जैसे है, फ्रेंड्स हैं और हैं उठ है, फिर बाकी सारे ईमान वालों के लिए। बाहर से अंदर की तरफ नहीं शुरू करना कि पहले फलां के लिए नहीं, मैं तो इतनी अच्छी हूँ कि मैं अपने लिए एंड पे करूंगी, ऐसे नहीं है, सबसे पहले अपने लिए करनी है, ठीक है। तो रब बना सकती है हमारे रब बख्श दी मुझको, वली वाली दैया और मेरे वालदैन को। अब वालदैन कि उन्होंने दुआ क्यों की जबकि इनके वाले तो बुत परस्त थे। नंबर वन रीजन इसका क्या है कि इन्होंने अपने वालिद से वादा किया था निकलते वक्त कि मैं आपके लिए दुआ करता रहूंगा, इसलिए दुआ की। नंबर टू रीजन क्या था, इसलिए कि अभी तक अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के लिए दुआ करने से मना नहीं किया था कि कोई मर भी जाए शिर्क के ऊपर तो उसके ऊपर अब आप दुआ नहीं कर सकते, ये पहले मना नहीं था, ठीक है। जब पता चल गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मेरा बाप शिर्क के ऊपर ही था और उसी के ऊपर कायम रहा, उसी के ऊपर चला गया, तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से मना हो गया था कि अब आप मुशरिक के लिए इस तरह से दुआ नहीं कर सकते। हाँ मुशरिक जब तक जिंदा है आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं अल्लाह इसको हिदायत दे, लेकिन अगर वो शिर्क के ऊपर मर गया, अब वो पता चल गया कि शिर्क पे मर गया, तब अलाउड नहीं है दुआ करना कि अल्लाह इसको माफ कर देना, क्योंकि शिर्क नाकाबिले माफी है। जब अल्लाह ने एक दफा कह दिया ना मैंने शिर्क को नहीं माफ करना, बस आप खत्म हो गए, अब आपका ये दुआ करना भी एक बेअदबी है, नहीं नहीं बस अब तू माफ कर। नूह अलैहिस्सलाम अपनी इतनी सी दुआ के ऊपर क़यामत के दिन देखें कितने फ़ौज़त आऊंगे कि मैंने अल्लाह से गलत दुआ कर ली थी, आज मैं नहीं बोल सकता, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ कर ली थी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। दुआओं को भी सोच समझ के करें, कोई शेर पे मर जाए तो आप नहीं कह सकते अल्लाह अभी इसको माफ कर, आप अपने तो अब आपका अगर क्वेश्चन ही आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर क्यों की, तो ये मैंने आपकी दो वजूहात आपको बता दी। तो वली वाली दैया वलिल मोमिनीना, और अल्लाह तमाम मोमिनों के लिए, या अल्लाह जितने ईमान वाले हैं उनको भी बख्श देना सब जिस दिन कायम हो जाएगा, जिस दिन हिसाब किताब होना, जिस दिन तेरे पास आना है अल्लाह, उस दिन सबको बख्श देना। इसका मतलब है कि एक इंसान को किस किस के लिए दुआ करनी चाहिए वो यहाँ पे बता दिया गया। ये इंसान इन सब के लिए दुआ करे, और ये इतनी प्यारी दुआ है, किसी के माँ बाप जिंदा हो या फौत हो गए, अगर माँ बाप ने बच्चों को देखे नमाजी बना दिया तो अब बच्चे जब तक नमाज पढ़ते रहेंगे, हमने तो एक ही रटाई होती है ना दुआएं, कम से कम आपको ये दुआ मिलती रहेगी। और नमाज समझ ले तौहीद जो है, तौहीद की एक 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 प्रैक्टिकली आप उसको दिखा रहे हैं, क्योंकि नमाज क्या है, सबसे रुख फेर के रब का रुख कर लेना, अपनी दुनिया से सब चीजों से अपने सब कामों से रुख हटा के एक अल्लाह की तरफ रुख कर लेना। तो ये इतनी खूबसूरत एक समझने चीज है कि जैसे एक जर्रा जो है, एक जर्रा जहानों के बादशाह के आगे खड़ा हो गया, और यही प्रैक्टिकली कयामत के दिन होगा कि इंसान खड़ा होगा अल्लाह के आगे हिसाब किताब के लिए। आज नमाज में जैसे खड़ा होता है ना, वैसे ही उस दिन खड़ा हो जाएगा। और नमाज एक समझ में ऐसे भी है जैसे इंसान अल्लाह ताला के सामने एक अहद कर रहा है कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, तू सबसे बड़ा सबसे आला, सारी तारीफ तेरे लिए, और मैं तेरा गुलाम, मैं एक जर्रा, मैं तेरे आगे इस तरह बिच जाने वाला कि मैं अपनी नाक भी रगड़ता हूँ जमीन के ऊपर और अपना माथा जमीन पे रखता हूँ तेरे आगे। नमाज में फरमा बरदारी से खड़े होना ये इंसान दिखाता है कि मैं अल्लाह जिंदगी में भी तेरी फरमा बरदारी करूंगा। और क़यामत के दिन आपको पता है ना, सबसे पहला हिसाब ही नमाज का होगा। जिसकी नमाज सही निकली तो उसे बाकी क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसकी नमाज ही नहीं सही निकली तो फिर पहला क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसी में आग पे डाल दिया जाएगा, फिर बाकी हिसाब पे बाद की बात है। अब यहाँ तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो पूरी हुई।